प्रिय श्रोताओं नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी हमारे साथ आज का बाइबल अध्ययन करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से यशाया नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और इसका मुख्य विषय है मसीह का आगमन और छुटकारा। प्रिय श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। लीजिए, प्रस्तुत है ये बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इन दिनों में यशाया की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने देखा कि परमेश्वर ने मूर्ति पूजा के विरोध में इसराइलियों को चेतावनी दी। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस समय के लिए जिसे आपने हमारे जीवन में फिर से एक बार दिया है ताकि हम आपके वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम दूर दराज में बैठकर आपके वचन का अध्ययन रेडियो के माध्यम से एक साथ करते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि जो कुछ भी आज हम सुनते हैं, सीखते हैं, निश्चित रूप से प्रत्येक के जीवन के लिए आत्मिक लाभ का कारण बन जाए। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो बीमार हैं, निराश हैं, चिंतित और परेशान हैं, अपनी नौकरी की तलाश में हैं, जीवन साथी की तलाश में हैं या पारिवारिक समस्याओं में हैं। पिताजी, आप उन सब की सुधि लें। आज इस घड़ी फिर से हम सबको आपके हाथ में सौंप देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और यशाया की पुस्तक 47 अध्याय से पहले देखेंगे जिसका विषय है बेबीलोन का पतन एवं विनाश। यशाया की पुस्तक में यह तीसरी बार है कि बेबीलोन के विनाश की भविष्यवाणी की गई है। इससे पहले अध्याय 13 और 14 और अध्याय 21 में उसके विरुद्ध भविष्यवाणियां की गई हैं। अध्याय 46 में भी बेबीलोन के पतन का संकेत दिया गया है। इस विषय पर इतनी अधिक चर्चा करना बड़ी असामान्य बात है क्योंकि उस समय बेबीलोन एक नगण्य छोटा सा राज्य था। अभी उसके उदय होने में 100 वर्ष हैं। वैसे तो बेबीलोन का अस्तित्व उस समय से है जब उन्होंने बेबीलोन का गुम्मट बनाया था और उसी समय से बेबीलोन विश्व पर धार्मिक प्रभाव डाल रहा है। बेबीलोन हर प्रकार की मूर्ति पूजा का प्रमुख स्रोत था। पुराने नियम की भविष्यवाणियां संबंधित पुस्तकों में शराब पीने और मूर्ति पूजा के विषय बहुत अधिक चर्चा की गई है। ये दो बातें किसी भी देश को पतन के मार्ग पर ले आती हैं। आज हमारे लिए भी इसमें आत्मिक संदेश हैं, जबकि हमें न तो पहले और न ही आगे चलकर बेबीलोन से संबंध रखना होगा। प्राचीन बेबीलोन दंड के कारण मलबे के नीचे खंडहर बना हुआ है। उसकी महिमा सदियों की धूल के नीचे दब गई है। बेबीलोन की यह मानसिकता संयुक्त राष्ट्र संघ की राजनीतिक प्रकृति में पाई जाती है। बाबेल वह स्थान है जहां विश्व की राजनीतिक शक्तियां एकत्र होती हैं, जो अंत में एक दिन एक निरंकुश राजा के अधीन होंगी। मेरे मित्रों, यह राजा ख्रिस्त विरोधी होगा। हम यूरोप के देशों में आर्थिक बंधनों को तोड़ने में व्यापारिक एकता का आगमन देखते हैं। हम रोमन कैथोलिक कलीसिया और वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस में अधिक धार्मिक एकता भी देखते हैं। हम यह सब प्राचीन बेबीलोन में भी देखेंगे। तो आइए हम देखें बेबीलोन का पतन, यशाया की पुस्तक उसके 47 अध्याय और उसके एक पद में लिखा है, हे बेबीलोन की कुमारी बेटी, उतर आ और धूल पर बैठ। हे कसदियों की बेटी, तू बिना सिंहासन भूमि पर बैठ, क्योंकि तू अब फिर कोमल और सुकुमार न कहलाएगी। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है उतर आ। यह बेबीलोन के लिए परमेश्वर की आज्ञा है। यह वैसी आज्ञा है जैसे कुत्ते को आज्ञा मानने के लिए कहा जाता है। परमेश्वर महान बेबीलोन से ऐसे ही कहेगा जब उसके पतन का समय आएगा। प्रभु यीशु ने गलील सागर पर उठने वाली आंधी को इसी प्रकार आज्ञा दी थी। उसने कहा था, मुंह बंद कर, जैसे आप कुत्ते के मुंह पर फंदा बांधते हैं। और यही विचार यशाया भी यहां पर प्रकट करता है। बेबीलोन को कुमारी इसलिए कहा गया है कि वह अभी किसी अन्य देश के अधीन नहीं हुआ था। बेबीलोन अभी एक शक्ति स्वरूप उभर रहा है, जबकि उसका अस्तित्व बहुत पुराना है। निम्रोद के समय से, जिसे हम उत्पत्ति 10 अध्याय में देखते हैं, वह बेबीलोन के भयानक अपमान की भविष्यवाणी भी करता है। यशाया 47 उसके दो पद में लिखा है, चक्की लेकर आटा पीस, अपना घूंघट हटा और घाघरा समेट ले, और उघारी टांगों से नदियों को पार कर। यह बाबुल के अवर्णित अपमान का चित्रण है। उस देश में इसराइलियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया था, और एक दिन ऐसा आया जब वह अपमानित किया गया। आज नग्नता कोई आश्चर्य की बात नहीं है, परंतु नग्नता मानवता का अपमान है। मनुष्य को परमेश्वर ने वस्त्र पहनाए थे तो वह आकस्मिक घटना नहीं थी। कपड़े न पहनना पागलपन है। बेबीलोन के लिए नग्नता का अर्थ था अपमान। यशाया की पुस्तक 47 अध्याय उसके 3 पद में आगे लिखा है, तेरी नग्नता उघाड़ी जाएगी और तेरी लज्जा प्रकट होगी। मैं बदला लूंगा और किसी मनुष्य को ना छोड़ूंगा। बेबीलोन द्वारा इसराइल को अधीन करना, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इसराइल को बेबीलोन के अधीन किया। मेरे मित्रों, यशाया 47 के 6 पद में आगे लिखा है, मैंने अपनी प्रजा से क्रोधित होकर अपने निज भाग को अपवित्र ठहराया और तेरे वश में कर दिया। तूने उन पर कुछ दया न की, बूढ़ों पर तूने अपना अत्यंत भारी जुआ रख दिया। परमेश्वर स्पष्ट करता है कि बेबीलोन इसराइल को बंधुआई में इसलिए ले गया कि परमेश्वर ने उसे छूट दी थी, इसलिए नहीं कि वह महान था। उनमें असीम शक्ति थी। वे इसराइल को पराजित करने का श्रेय स्वयं को देते थे। उनका सोचना गलत था। परमेश्वर ने इसराइल को उनके अधीन किया था क्योंकि इसराइल ने परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया था। वह अपनी प्रजा को दंड दे रहा था। हबक्कूक की भविष्यवाणी का यही संदेश है। यशाया की पुस्तक 47 अध्याय के 7 पद में लिखा है, तूने कहा, मैं सर्वदा स्वामीन बनी रहूंगी, इसलिए तूने अपने मन में इन बातों पर विचार न किया और यह भी न सोचा कि उनका क्या फल होगा। मेरे मित्रों, अपनी प्रजा को दिए गए परमेश्वर के दंड ने बेबीलोन को भ्रम में डाल दिया था। वे सोचते थे कि उन्होंने अपने सामर्थ्य से परमेश्वर की प्रजा को अपने अधीन में कर लिया है। यशाया 47 के 8 पद में लिखा है, इसलिए सुन, तू जो राग रंग में उलझी हुई निडर बैठी रहती है और मन में कहती है कि मैं ही हूं और मुझे छोड़ कोई दूसरा नहीं, मैं विधवा के समान ना बैठूंगी और ना मेरे बाल बच्चे मिटेंगे। बेबीलोन हठीला, घमंडी और असावधान था। उन्हें अपने भयानक पतन की चिंता भी नहीं थी। नबूकदनेज़र ने अपने सुंदर एवं महिमामय बेबीलोन को देखकर कहा, यह महान बेबीलोन जिसे मैंने बनाया है। उसने परमेश्वर को प्रतिष्ठा प्रदान नहीं की। परमेश्वर ने उसे भुलंकड़ बनाकर जंगल में बैल के समान घास खाने के लिए भेज दिया। एक लंबे समय तक वह भूल गया कि वह कौन था। उसके लिए यह परमेश्वर का दंड था। हम देखते हैं बेबीलोन के विनाश का विवरण। यशाया की पुस्तक 47 अध्याय के 10 पद में लिखा है, तूने अपनी दुष्टता पर भरोसा रखा, तूने कहा, मुझे कोई नहीं देखता। तेरी बुद्धि और ज्ञान ने तुझे बहकाया और तूने अपने मन में कहा, मैं ही हूं और मेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं। कोई मनुष्य हो या देश, घमंड से भरकर यह सोचना कि वह स्वयं ही कुछ कर सकता है तो वह संकटकालीन स्थिति में है। आज के युग में मनुष्य धनवान बन जाता है और बन सकता है, मानव सेवा या योगदान द्वारा नहीं, उद्योग के द्वारा, जो मनुष्य के विकास की अपेक्षा उसके विनाश का कारण ही है। शराब के व्यवसायियों के बारे में सोचें जो शराब बेचकर धन कमा रहे हैं। हम अनेक संदिग्ध व्यापार में हैं जिनकी विधियां माननीय नहीं है। हम तो बातों को छिपाना चाहते हैं, परंतु परमेश्वर सब कुछ देखता है और वह दंड देगा, जैसे उसने बेबीलोन को दंड दिया। अब हम आगे देखेंगे बेबीलोन की दुविधा। यशाया की पुस्तक 47 अध्याय के 12 पद में लिखा है, अपने तंत्र मंत्र और बहुत से टोनों को, जिनका तूने बाल्यावस्था ही से अभ्यास किया है, उपयोग में ला। संभव है तू उनसे लाभ उठा सके या उनके बल से स्थिर रह सके। अब परमेश्वर व्यंग पूर्वक कहता है कि बेबीलोन जादू टोना करे, क्योंकि उसने उसी में विश्वास किया और संकटों में घिर गया। परमेश्वर के कहने का अर्थ था, तूने सोचा था कि वह अति महान है, तो अब समस्याओं से बचने के लिए उसको अपने काम में ले ले। यशाया 47 अध्याय के 13 पद में हम पढ़ते हैं, तू तो युक्ति करते करते थक गई है, अब तेरे ज्योतिषी जो नक्षत्रों को ध्यान में देखते और नए नए चांद को देखकर होनहार बताते हैं, वे खड़े होकर तुझे उन बातों से बचाएं जो तुझ पर घटेंगी। बेबीलोन पूर्ण रूप से उलझन में है, जैसा उसका नाम है वैसी ही उसकी दशा भी हो गई है। बेबीलोन का अर्थ है अव्यवस्था, वे अव्यवस्था में है। वह देश अपनी आर्थिक शक्ति और उत्पादों पर गर्व करता था, परंतु कुछ तो ऐसा हुआ कि वह भीतर ही भीतर नष्ट हो रहा था। बेबीलोन यद्यपि अप्रासंगिक प्रतीत होता है, उसमें हमारे लिए एक संदेश है। बेबीलोन के मलबे के पत्थर हमें चेतावनी देते हैं। मेरे मित्रों, हम आगे देखते हैं अध्याय 48 में, जिसका विषय है याकूब के घराने को अंतिम पुकार, बचे हुए इसराइलियों को परमेश्वर की हार्दिक पुकार। इन अंतिम तीन भागों का समापन इससे उक्ति से होता है, दुष्टों के लिए शांति नहीं। जी हां, यशाया की पुस्तक उसके 57 अध्याय के 21 पद में हम इसे पाते हैं, प्रभु यीशु शांति लाता है, परंतु उसे अस्वीकार करने वालों के लिए शांति नहीं है। मूर्ति पूजा का अर्थ है प्रभु यीशु का त्याग, जैसा हमने देखा है। यह भाग मूर्ति पूजा के परित्याग का विशेष भाग है। मूर्ति पूजा बेबीलोन की ओर ले जाने वाला मार्ग है। इस पुस्तक में परमेश्वर अकेला ही कलवरी के मार्ग पर चल रहा है। अब हम देखेंगे याकूब के घराने को अंतिम पुकार। यशाया के पुस्तक 48 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, हे याकूब के घराने, यह बात सुन, तुम जो इसराइली कहलाते और यहूदा के सोतों के जल से उत्पन्न हुए हो, जो यहोवा के नाम की शपथ खाते हो और इसराइल के परमेश्वर की चर्चा तो करते हो, परंतु सच्चाई और धर्म से नहीं करते। कुछ विचारकों का कहना है कि इसराइल और यहूदा अलग अलग है। परमेश्वर यहां इस विचार का खंडन करता है। परमेश्वर ने उन्हें जो नाम दिया है उसे न बदलें। यहां याकूब का पूर्ण घराना चर्चा का विषय है। वे अब्राहम, इसहाक और याकूब के द्वारा चुने हुए लोग हैं। उस युग का ईश्वर त्यागी देश और आज का इसराइल परमेश्वर की ओर फिर जाने का आदेश सुने। वे इसराइल के परमेश्वर के विषय ऐसी बातें करते थे कि जैसे वे उसे जानते हैं, परंतु सच तो यह है कि वे न तो उसे जानते हैं और न उसकी सेवा करते हैं। उनका धर्म अशक्त है। उनकी समस्याओं का समाधान किसी देश में नहीं है। उनकी सहायता तब ही आएंगे जब वे परमेश्वर की ओर फिरेंगे। उनका और हमारा समाधान भी इसी में है। यशाया की पुस्तक 48 अध्याय के 2 पद में लिखा है, क्योंकि वे अपने को पवित्र नगर के बताते हैं और इसराइल के परमेश्वर पर, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, भरोसा करते हैं। मेरे मित्रों, वे यरूशलेम वासी होने और परमेश्वर की संतान होने पर गर्व करते हैं, परंतु केवल नाम के हैं, परमेश्वर के लिए तो वे अनजान हैं। हम यशाया की पुस्तक 48 अध्याय उसके 4 पद में आगे पढ़ते हैं, मैं जानता था कि तू हठीला है और तेरी गर्दन लोहे की नस और तेरा माथा पीतल का है। मिस्र से इसराइल को मुक्ति दिलाने के समय से ही परमेश्वर जानता था कि वे हठीले लोग हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उन्हें इसलिए नहीं चुना था कि वे उत्तम जन थे। उसने हमें भी इसलिए नहीं चुना है कि हम लोग उत्तम लोग हैं, उत्तम जन हैं। परमेश्वर ने उन्हें और हमें इसलिए चुना कि वह अनुग्रहकारी है और आवश्यकताग्रस्त मनुष्य है। हम आगे देखते हैं शेष इसराइलियों के लिए परमेश्वर की हार्दिक पुकार। परमेश्वर अपनी प्रजा से विनती करता है कि वे उसकी बातों को सुने। यशाया 48 के 12 पद में लिखा है, हे याकूब, हे मेरे बुलाए हुए इसराइल, मेरी ओर कान लगाकर सुन, मैं वही हूँ, मैं ही आदि और मैं ही अंत हूँ। ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर संपूर्ण इसराइल की अपेक्षा बचे हुए समूह को संबोधित करता है, जिसे वह मेरे बुलाए हुए लोग कहता है। तब हम पढ़ते हैं यशाया 48 के 15 पद में, मैंने, हाँ मैं ही ने कहा और उसको बुलाया है, मैं उसको ले आया हूँ और उसका काम सफल होगा। यह परमेश्वर के मन की पुकार है। यशाया की पुस्तक 48 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है, मेरे निकट आकर इस बात को सुनो, आदि से लेकर अब तक मैंने कोई भी बात गुप्त में नहीं कही, जब से वह हुआ तब से मैं वहाँ हूँ और अब प्रभु यहोवा ने और उसकी आत्मा ने मुझे भेज दिया है। मेरे मित्रों, यशाया परमेश्वर का संदेश वाहक है। वह उनसे विनती करता है और आप इसमें प्रभु यीशु की वाणी सुन सकते हैं। एफ डेलिस्ट कहता है, क्योंकि भविष्यद्वक्ता ने अपने आप में पहले कुछ नहीं कहा, जबकि दूसरी ओर ये शब्द अगले अध्याय में उसके वचन है, जो स्वयं को यहोवा का दास, इसराइल का पुनरुद्धारक और अन्य जातियों की ज्योति कहता है। अतः वह इसराइल देश नहीं हो सकता, या यशाया हो सकता है। वह प्रभु यीशु के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। मेरे मित्रों, परमेश्वर इसराइल को अपने संपूर्ण आशीषों से समृद्ध नहीं कर पाया है, जैसी उसने प्रतिज्ञा की है। इसी प्रकार आप और मैं भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसकी आशीषों के पात्र नहीं हुए हैं। यह किसका दोष है? क्या यह परमेश्वर का दोष है? जी नहीं, यह इसराइल का, आपका और मेरा दोष है। यशाया की पुस्तक 48 अध्याय उसके 19 पद में लिखा है, तेरा वंश बालू के किनकों के तुल्य होता और तेरी निज संतान उसके कणों के समान होती, उनका नाम मेरे सम्मुख से न कभी काटा और न मिटाया जाता। अब वह इस अंग का समापन भी उसी प्रकार से करता है जिस प्रकार उसने यशाया के इन तीनों मुख्य अंशों का समापन किया है। यशाया की पुस्तक 48 अध्याय के 22 पद में लिखा है, दुष्टों के लिए कुछ शांति नहीं, यहोवा का यही वचन है। मेरे प्रियो, यह इस भाग का पावन आशीर्वाद है, जब परमेश्वर का दास सब मूर्तियों के विरोध खड़ा है, केवल वही शांति दे सकता है। यदि मनुष्य परमेश्वर से दूर पाप में निर्वाह कर रहा है तो वह संसार में कहीं शांति नहीं पाएगा। हमारे पास हजारों वर्षों का इतिहास है जो प्रकट करता है कि परमेश्वर से रहित या परमेश्वर से अलग होकर मनुष्य को शांति नहीं मिलती है। यदि आज आप सोच रहे हैं कि आप बहुत अधिक धन संपत्ति कमा लेंगे और आपके पास सब कुछ हो जाएगा और आप शांति से रहेंगे, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि आप परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। उस शांति को आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे, सिर्फ प्रभु यीशु अर्थात परमेश्वर के द्वारा ही आप उसे पाएंगे। मेरे प्रियो, आइए आज हम उस महान शांति की ओर बढ़ें ताकि हम उसमें आनंदित हो सकें। आज हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
कितना भी तुझको सताए कोई, कितना